आज हमारे बीच में विशेष हमारी वरिष्ठ राजयोगा लक्ष्मी दीदी जी आए हैं, तो लक्ष्मी दीदी का हम एक ताली के स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि अभी क्लास उषा दीदी का होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंज हुआ, दीदी को कहीं जाना पड़ा किसी सेवार्थ। तो ड्रामा का ज्ञान तो पक्का है ना, ड्रामा की क्लास होने दें। तो अभी सचमुच ड्रामा हमारी क्लास करा रहे हैं। तो हम सब तो आत्मा तो ड्रामा को जाने जानन हार आत्माएं हैं। तो बाबा ने विशेष ऐसे चुने हुए रतन आज हमारे बीच में आए हैं, तो हमारा कितना सौभाग्य है कि इतनी महान अनुभवी आत्मा, इतनी महान दीदी से हमें मिलने का चांस मिलेगा, उनको सुनने का भाग्य मिला है। आप लक्ष्मी दीदी जी ईश्वरीय ज्ञान में बचपन से ही हैं और 43 इयर्स से आप समर्पित हैं। पंजाब जोन में आप विशेष पंजाब जोन से हैं और हासी सेवा केंद्र हरियाणा की आप मुख्य संचालिका हैं। अभी वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर एकेडमी में निर्मला दीदी की एब्सेंस में आप ज्ञान सरोवर संभाल रहे हैं। तो ज्ञान सरोवर से दीदी जी का विशेष आना हुआ है। तो आज आप हमें विशेष फरिश्ता स्थिति, आज का दिन है हमारा फरिश्ता स्थिति का, तो सभी फरिश्ते हैं ना। अभी विशेष रूप से दीदी हमें फरिश्ता स्थिति पर क्लास भी कराएंगे और विशेष अनुभूति कराएंगे कि हम फरिश्ते बनकर के सदा ही फरिश्ते बने रहें, फरिश्ता स्थिति हमारी नेचुरल स्थिति बन जाए। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। एक बार दोबारा हम दीदी जी का स्वागत करते हैं एक हाथ की ताली से।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं प्यारे बाबा की इस तपस्वी भूमि पर, जहां साकार मम्मा बाबा उन्होंने इतनी तपस्या की और विशेष इस धरनी पर आकर के तपस्या का आनंद ले रहे हैं। आपकी भट्टी कब से शुरू हुई है? कल से शुरू हुई है, तो दो दिन से इसका आनंद ले रहे हैं। सचमुच में पांडव भवन के अंदर बाबा के स्थान पर आकर के तपस्या करना, जहां इतने पावरफुल वाइब्रेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सबको प्यारे बाबा ने संगम युग पर इतने अनमोल खजाने दिए हैं कि सचमुच में हम सबके जीवन को बाबा ने बहुत भाग्य से, खुश नसीबी से भरपूर किया है। तो संगम युग पर समझदार उसे कहेंगे कि जो इस मिले हुए सौभाग्य का पूरा फायदा उठाते हैं। अपने आप से ये पूछना है, भगवान ने हमें अनेकों में से चुना, वो हमारी रोज पालना कर रहे हैं। भक्त आत्माएं तो केवल गायन करती है कि भगवान पालनहार है, लेकिन सचमुच में उसकी पालना क्या होती है, उसका सौभाग्य हम बच्चों को मिला है। सवेरे सवेरे उठने से लेकर के बाबा हर पल हम बच्चों का साथ निभाने के लिए बंधा हुआ है। सवेरे सवेरे उठते ही बाबा हमें वरदान देते हैं, शक्ति भरते हैं अमृत वेले, और फिर साथ साथ बाबा ऊंचे से ऊंची ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। केवल इतना ही नहीं, लेकिन सारा दिन हर पल बाबा कहते, बच्चे अब तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है, हर पल बाबा को अपने साथ रखो, साथ साथ। और भगवान बंधा हुआ है, जो बच्चे दिल से बाबा को याद करें, पुकारें और बाबा हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। तो सारा दिन जो हर कदम पर हमें साथ देने के लिए तैयार है, फिर भी अगर हम अकेले रहें, सारा बोझ अपने ही सिर पर रखें, तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? इसलिए संगम युग का और इसमें जो प्राप्तियां हैं और जो बाबा का सहयोग है, उसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना है। बहुत अच्छी तरह मौजों का जीवन, जिसको बाबा कहते हैं, एकदम लाइट, सब बोझ बाबा को अर्पित करके हल्के हो जाओ। और बिल्कुल हल्का हो जाना, निश्चिंत हो जाना और अपने आप को सब सूक्ष्म रस्सियों से भी मुक्त कर लेना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है फरिश्ता स्थिति। बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में अलग अलग हमें बहुत सारे फरिश्ते के लक्षण सुनाए हैं। किसको कहेंगे फरिश्ता? जो बिल्कुल हल्का हो, लाइट है, जिसके पंख हैं, जो उड़ता रहता है, लेकिन उड़ने वाले को बिल्कुल हल्का होना जरूरी है। तो फरिश्ता एक मन की बिल्कुल हल्की, उपराम, सब बोझों से मुक्त स्थिति का नाम है। फरिश्ता बिल्कुल सफेद सफेद होता है, सफेद माना बिल्कुल कंप्लीट प्योर। तो हमें एक एक लक्षण को अपने जीवन में उतारना है, तभी तो कहेंगे ना फरिश्ता बन रहे हैं। संगम युगी लक्ष्य हम सबका क्या है? क्या लक्ष्य है हम सबका? ब्राह्मण तो हम सब बने, चोटी सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ब्राह्मण सो देवता बनने के बीच में क्या है? ब्राह्मण से हम सबको फरिश्ता बनना है। डायरेक्ट ब्राह्मण भी देवता नहीं, लेकिन बीच में हमें अपनी फरिश्ता स्थिति बनानी है। चलते फिरते उठते बैठते तो अपनी जांच करनी है हमें, अपने आप को देखना है। वैसे तो फरिश्ता माना सूक्ष्म वतन में जाके बाबा से मिलन मनाए, शक्ति भरे, पांच स्वरूपों के अभ्यास में हम सब चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो फरिश्ता स्थिति हमारी जीवन में कायम रहे, उसके लिए हमें एक एक लक्षण के ऊपर चिंतन करते हुए और वो अपने जीवन के अंदर झांक करके देखना है कि वो फरिश्ते वाला लक्षण मेरे जीवन में कितना आया है। और इसके लिए, हल्केपन के लिए, बाबा ने कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी बताई हैं। अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो सहज ही हम सब कुछ देखते सुनते हुए भी हल्की स्थिति में आ सकते हैं। तो एक बाबा ने एक शब्द बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि बच्चे जीवन के अंदर साक्षी भाव को पक्का करो, और दो शब्द इकट्ठे बाबा अक्सर हमें देते हैं, साक्षी और साक्षी और साथी। तो साक्षी का मतलब क्या है? बहुत बार बाबा ने इसकी गहराई हमें समझाई है। किसको कहेंगे? बिल्कुल साक्षी होकर के रहना। साक्षी माना क्या? साक्षी माना क्या? डिटैच। अच्छा, और कुछ? देखते हुए भी न देखना। और कुछ? हाँ जी, स्थिति हलचल में ना आए, बहुत अच्छा। और कुछ? किसको कहेंगे साक्षी? बहुत अच्छा बताया आप सबने। साक्षी माना सुबह से शाम तक सब कुछ करते हुए, सब कुछ देखते हुए, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट और निर्दोष दृष्टि, ये तीन चीजें इसके अंदर हमें अच्छी तरह से अपने जीवन में पक्की करनी है। कोई प्रश्न नहीं, अपने आप को देखना है कि छोटी छोटी बातों में प्रश्न पैदा हो जाता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। बाबा की मुरली सुनी, घर गए और जाते ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात पे, बहू ने ऐसा क्यों कर दिया, बच्चे ने ऐसा क्यों किया, अब तक उठी नहीं, मैं तो सुबह सुबह उठ करके तैयार हो गई। बहुत सारे ऐसे ही भाइयों को भी कई तरह के ऑफिस में है, ये जो कर्मचारी है ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा बॉस ऐसा क्यों करता है, क्यों? क्वेश्चन। बहुत छोटी छोटी बातों में क्वेश्चन पैदा हो जाते। घर में मान लो सर्वेंट लेट आई, लेट क्यों? तो जहां हमारे मन में क्यों पैदा होता है, वहां जो चित्त की शांति है वो भंग हो जाती है। वहां हम हल्के नहीं रह सकते हैं, वहां हमारी उड़ने वाली स्थिति जो है, फरिश्ता स्थिति जो है, वो नहीं बन पाती है। क्योंकि फरिश्ते के पास कोई भी क्यों, कोई भी क्यों नहीं होता। तो अपने आप को ये प्रैक्टिकल, बाबा की मुरली सुनी, फिर घर में जाके उसका पूरे दिन भर उसका प्रैक्टिकल चलता है। बाबा ने कहा बच्चे साक्षी होकर के रहो, तो साक्षी माना कोई प्रश्न नहीं। एक प्रैक्टिकल बात है, एक माता घर में गई और जो है ना बच्चे ने, उसने सुबह सुबह नाश्ते में उसको दूध दिया, एक गिलास दूध दिया और दूध उसके हाथ से गिलास छूट गया, गिलास भी टूट गया और दूध भी बिखर गया। अब उसे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसकी खूब जोर से पिटाई कर दी। तो बच्चा एकदम सहम गया और उसको बुखार हो गया। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने 300 रुपए फीस ले ली, 200 रुपए की 300 रुपए की दवाई दे दी, 500-600 रुपए खर्च हुए। और फिर सारा दिन मन अशांत, बच्चा भी अशांत। केवल क्या था? केवल एक छोटा सा संकल्प, क्यों किया? अगर उसकी बजाय ये सोच लेती कि चलो जो हो गया सो हो गया, सारे घर का वातावरण भी शांत, अपना चित्त भी शांत। दूध कितने का होता होगा? एक गिलास दूध दिल्ली में कितने का मिलता है? 15-20 रुपए का मिलता होगा। वहां इतना खर्च भी हुआ, सारे दिन की शांति भी भंग हो गई। बहुत छोटी बातों पर, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी होती हैं, और उसके ऊपर हम क्यों करते हैं। और जैसे ही क्यों पैदा होता है तो नेगेटिव एनर्जी भी चालू हो जाती है, और जिसके साथ होता है उसको भी वो नेगेटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो खुशी, शांति, हल्कापन सब कुछ गया। इसलिए साक्षी माना, नो क्वेश्चन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में मान लो कुछ गलत हो रहा है या बच्चा कुछ गलत कर रहा है या कोई भी, हम जिम्मेवार हैं, बड़े हैं, तो हम उसको कुछ कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां पर हमारी जिम्मेवारी है, हम सब चीजों के लिए गाइड भी करेंगे, मार्गदर्शन भी देंगे सबको, लेकिन बहुत ज्यादा पोजेसिव नहीं होना है। मेरापन, तो इसलिए साक्षी माना, नो क्वेश्चन। कुछ भी बात हो गई, समझाना, गाइड करना, वो हमारा फर्ज है। लेकिन दो बार, तीन बार, चार बार समझाने के बाद भी मान लो कोई नहीं ठीक करता, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर मन शांत हो जाना चाहिए, होना चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को क्या ज्ञान दिया है, बहुत सूक्ष्म कर्म गति बाबा ने समझाई है कि बच्चे जीवन के अंदर ये अंतिम जन्म है हम सबका और अंतिम समय है। पिछले कई जन्मों के अंदर भी जिन आत्माओं के थोड़े थोड़े हिसाब किताब रहे हुए हैं, वो सब आत्माएं इस जन्म में ही हमसे चुकतू करेंगी, क्योंकि हमारे में से किसी को भी धर्मराजपुरी में तो नहीं जाना ना। फरिश्ते थोड़ी धर्मराजपुरी में जाएंगे, फरिश्ते तो बड़े आदर और सम्मान से जाएंगे। तो इसलिए सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। कुछ आत्माएं आपको जीवन में ऐसी मिलेंगी जो आपको बहुत सहयोग देंगी। कई बच्चे बड़े सुखदाई होंगे, बहुत अच्छे होंगे, हैं, बड़े कोऑपरेटिव, पड़ोसी भी बड़े अच्छे होंगे कई बार। और कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी जो हमारे को बहुत दुख देंगी, रुकावट डालेंगी, समस्याएं पैदा करेंगी हमारे काम के अंदर। तो उन आत्माओं के प्रति भी एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं करना, क्योंकि कई बार हम ये तो कह देते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन कभी ना कभी, किसी न किसी जन्म में मैंने भी उस आत्मा के लिए समस्याएं पैदा की होंगी या कुछ न कुछ कष्ट पहुंचाया होगा, और अब वो आत्मा अपना ऋण पूरा कर रही है। तो हिसाब किताब कैसे चुकतू करना चाहिए? कैसे? हमें ये तो समझ आ गई कि ये कर्म का हिसाब किताब और चुकतू हो रहा है, लेकिन उसको बड़े सहज भाव से चुकतू करना है, प्यार से। अगर हम दुखी होकर के उस हिसाब को चुकतू करते हैं कि चलो ये कोई मेरे कर्मों का हिसाब है, अंदर से बड़े दुखी हैं और उसके लिए कुछ कुछ सोच रहे हैं, तो पुराना खाता तो उसका चुकतू हो गया, लेकिन एक नया खाता और बन गया जो मुझे ही फिर से चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को बिल्कुल सहज सरल रखना है। सारा दिन अपने मन की इतनी अच्छी तैयारी कर लें, फरिश्ता माना, ये नहीं कि कुछ देर तो सहज और कुछ देर फिर नेगेटिव। फरिश्ता माना सारा दिन बिल्कुल लाइट। अलग अलग आत्माएं हैं, सबके कर्म खाते अलग अलग हैं, सबके स्वभाव अलग हैं, सबका मेरे साथ जो लेन देन है वो हिसाब किताब भी कुछ अलग है, लेकिन फिर भी फरिश्ता माना, सबके लिए कल्याण की भावना। फरिश्तों के लिए क्या दिखाते हैं? उड़ते उड़ते आया और कल्याण भावना से कोई मैसेज दिया, संदेश दिया, सकास दिया और चला गया। तो फरिश्ता स्थिति माना बदले की भावना नहीं, कि ये ऐसे करते हैं इसलिए थोड़ा तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, वो नहीं। फरिश्ता माना चाहे कोई कुछ भी करे। कई बार बाबा कहते हैं कि चाहे कोई आत्मा कितनी भी दुखदाई हो, रावण जैसी हो, एक बार बाबा की मुरली में आया, उसके लिए भी हमें अशुभ नहीं सोचना है और अपने मन को अच्छी तरह समझा देना है कि हर एक अपने अपने तरीके से ही रोल करेगा, क्योंकि उसका पार्ट अपना और मेरा पार्ट अपना है। लेकिन किसी के प्रति भी अधिकार भाव नहीं रखना कि ये तो मेरा पति है, ये तो मेरी बहू है और मैं तो सास हूं, तो मुझे तो ऐसा, अब मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा है। देखो परसों बाबा ने साकार मुरली सुनी ना, कितना पक्का कराया बार बार कि सबको मस्तक में आत्मा देखना है, ये पाठ पक्का करना है। इसलिए जब तक किसी एक आत्मा के प्रति एक भी नेगेटिव संकल्प है इस पूरे विश्व के अंदर, जब तक एक आत्मा के प्रति एक भी नेगेटिव संकल्प है, तब तक हम फरिश्ता, फरिश्ते को छूट है कि एक एक के लिए तो कोई बात नहीं है, छूट। एक बार एक बहन ने आके कहा कि बहन जी मैं सारी दुनिया के लिए शुभ सोच सकती हूं, लेकिन जो मेरी सास है ना, मैं उसके लिए नहीं सोच सकती। तो बाबा ने ये कहा है, एक दो आत्माएं सबके परीक्षा के लिए जरूर होंगी, जब तक उसके लिए शुभ नहीं सोचेंगे तब तक फरिश्ता नहीं बन सकते। तो करेंगे ये बात पक्की, फरिश्ता बनना है तो किसी के लिए भी अशुभ नहीं सोचना है, सबके लिए कल्याण भावना। बाबा इसका भी कल्याण हो जाए, इसको भी सद्बुद्धि मिले, उसके लिए थोड़ा सा और ज्यादा पॉजिटिव सोचो तो उस आत्मा को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, धीरे धीरे उसका चिंतन भी आपके लिए बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं, कोई गिला सिकवा नहीं। ऐसी वैसी जो भी आत्मा है, जब मैं उसके साथ बिल्कुल शुभ भावना से जीना सीख लूं, तभी समझो मैं अपनी परीक्षा में पास हो सकूंगी। तो इसलिए अगर हमें फरिश्ता बनना है, चित्त को बिल्कुल शांत करना है, तो कोई क्वेश्चन नहीं, और बिल्कुल निर्दोष दृष्टि, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई जीवन में समस्या आई है, लेकिन सबके सबको निर्दोष भाव से देखना, क्योंकि बाबा ने जहां हमें खुद की पहचान दी, जहां हमें स्वयं की पहचान दी, वहां बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे ज्ञान का निश्चय का एक पाया है, निश्चय के चार पाए बाबा बताते ना, उसमें एक निश्चय का पाया हमारा कौन सा है, ड्रामा। और ड्रामा की कोई भी सीन गलत हो सकती है, पक्की बात है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि नया तो कोई सीन आ ही नहीं रहा, जो 5000 वर्ष पहले वाला है वही सीन आ रहा है। और दूसरी बात फिर बाबा ने क्या कही, उसी सीन में कुछ ना कुछ कल्याण है, कुछ ना कुछ कल्याण है। लेकिन हम सारा दिन फिर भी क्या कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, हम ड्रामा को भी बदलने की कोशिश करते हैं और हर सीन को भी बदलने की कोशिश करते हैं, और ये कार्य असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारी खुशी, हमारी शांति उस प्रयास में वेस्ट हो जाएगी, और जब हमारी खुशी और शक्ति वेस्ट होगी तो मैं फरिश्ता बन के कैसे उड़ सकूंगा। तो इसलिए ड्रामा की पॉइंट को पूरा दिन प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल हमें करना है। हर सीन को देखते हुए अपने आप से पूछना है कि मुझे इसमें ऐसा तो नहीं लगा, ये क्यों, क्योंकि इस सीन में भी कुछ ना कुछ कल्याण है। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है अनीता बहन मेरे पास आई, जो यहाँ कोऑर्डिनेट कर रही है, 4:30 बजे के बाद अभी हम उठ के फ्रेश ही हो रहे थे ज्ञान सरोवर में, और फिर क्योंकि दीदी जी गए हुए हैं, निर्मला दीदी, तो वहां की भी कुछ जिम्मेवारी थी, 7 बजे भी कुछ था, तो उन्होंने कहा आपको अभी अभी जाना है। तो एक बार तो आया अभी अभी, कहते हैं 5:30 बजे 5:15 आपको जाना है, और 4:35-40 तो हो चुके थे, और अभी तो मैं उठी ही थी तो जो है ना रेस्ट करके, तो उन्होंने कहा अभी अभी जाना है। फिर तुरंत याद आया कि ड्रामा की कोई भी सीन नई नहीं है, उसमें ही कुछ ना कुछ कल्याण है, क्योंकि उनको भी पूरा फेथ है कि एट ए टाइम कौन जा सकता है, हैं? तो खास वो ढूंढ के रूम में आई अनीता बहन, आज उनका प्रोग्राम उधर सोशल में था, तो जो है कहा भी जाना है, मन का चलो ठीक है, हर सीन में कोई ना कोई कल्याण है, और ये सीन नई नहीं है, हम और आप सब 5,000 वर्ष पहले भी इसी पांडव भवन में इसी स्थान पर इसी तरह मिले थे और अब फिर से मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें जीवन की हर सीन में कुछ कल्याण देखना है, कुछ कल्याण देखना है। भले कुछ सीन ड्रामा की ऐसी भी आएंगी जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होंगी कई बार, लेकिन फिर भी हमें ड्रामा के ज्ञान को ध्यान में रखकर बिल्कुल लाइट रहना है, बिल्कुल लाइट। क्योंकि फरिश्ते का मतलब ही क्या है कि जो हर परिस्थिति में हर सीन में डबल लाइट रहता है। डबल लाइट माना जिसको आत्मा ज्योति की भी स्मृति है और जो बिल्कुल हल्का है। आपके पास अपने अपने कार्य क्षेत्र में, घर में, परिवार में, ऑफिस में, बिजनेस में, हर जगह कुछ ना कुछ सीन ऐसी आएगी ऊपर नीचे, लेकिन हर सीन को हमें एंजॉय करना है, हर सीन को एंजॉय करना है, इसी में कुछ कल्याण है, इसमें ही हमारा कुछ ना कुछ भाग्य छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी परिस्थिति में कोई संकल्प नहीं उठाते और मन को बिल्कुल लाइट रखते हैं, तभी हम बिल्कुल हल्के फुलके फरिश्ते बन सकते हैं। हर सीन में से कुछ पॉजिटिव निकाल लेना अपने लिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव। एक बार सेंटर पर सुबह सुबह, जैसे अक्सर होता है आपके सेंटर्स पर भी, सवेरे सवेरे कोई भाई आया और उसको कहा कि आपको ये सेवा करनी है, थोड़ा सफाई करके सारा सामान उठा के और इसको ऊपर स्टोर में रखना है। अब देखो हल्का रहे या भारी रहे, तो उसको वो देखते ही जो है ना संकल्प आया कि मैं तो सुबह सुबह योग करने आया था, क्लास करने आया था, पर बहन जी ने कहा है ना, तो कुछ बोल नहीं सका, चुपचाप लग गया और वो सारा सेवा तो कर दी, पर संकल्प चलते रहे कि सुबह सुबह आते ही काम बता दिया। लेकिन दूसरा भाई, उसको भी वही काम बताया उसी प्रकार का कुछ और, तो उसका चिंतन दूसरी टाइप का था कि देखो मेरा कितना अच्छा सौभाग्य है, एक तो दीदी का मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे ही कहा, और सुबह सुबह बाबा ने मुझे सेवा का भाग्य बनाने का मौका दे दिया। इसको कहते हैं मन की स्थिति में हल्का कैसे रहें। एक बार बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में सुनाया था कि आज बाबा सब बच्चों के अकाउंट चेक कर रहे थे, तो बाबा ने देखा कि कुछ बच्चों के खाते में बहुत कुछ जमा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उतनी ही सेवा करते हैं, उतना ही समय लगाते हैं, लेकिन उनके खाते खाली थे। तो समझ गए ना, समय उतना ही लगाया, सेवा उतनी ही की, लेकिन मन की स्थिति क्या रही। हमारा पुण्य, हमारा भाग्य उससे बनता है। इसलिए फरिश्ता माना जो अपनी दुआओं का, पुण्य का खाता भरपूर करता ही जाए, करता ही जाए, क्योंकि फरिश्ता सबको बांटता है। और बांटेगा कब, जब उसका अपना स्टॉक पूरा भरपूर होगा पूरी तरह से। तो इसलिए हमें साक्षी भाव को जीवन में बहुत पक्का करना है और बाबा साथी को अपने साथ रखना है, महसूस करना है। ये हर कर्म में बाबा को अपना साथी बना के रखो। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, हैं? सुनते रहते ना आप, देखते रहते होंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। हमारे साथ हर पल कौन है, हजार भुजाओं वाला है। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, तो जीवन के अंदर कितनी खुशी, अपार खुशी। और फरिश्ता माना ही क्या, जिसको उमंग उत्साह के पंख लगे हुए हैं। लेकिन उमंग उत्साह खुशी किसकी भरपूर रहेगी, जो बाबा को हर कर्म में, हर कदम में अपने साथ साथ रखेगा। हर कर्म में बाबा को अपने साथ साथ रखेगा। सचमुच में जितना हम बाबा साथी को साथ रखते हैं तो सब काम सहज सरल हो जाते हैं, बिल्कुल सरल हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी बात भी ऐसे सरल हो जाती है जो बात मत पूछो। हमारे पास हरियाणा में गांव-गांव की सेवाएं बहुत हैं और गांव-गांव के अंदर भी माताएं बहने भी करती हैं, हम लोग वही प्रैक्टिस और वो माताओं को भी करवाते हैं, तो ये प्रैक्टिस करती हैं अनपढ़ माताएं भी कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और वो शक्तियों की किरणें वो अपने घर के अंदर अपनी सब समस्याओं के लिए भी उसका प्रयोग करती हैं और इतने अच्छे अनुभव सुनाती हैं आके, जो बात पर पूछो, असंभव बातें भी संभव होती हैं, बिल्कुल असंभव बात वो भी सहज सरल हो जाती है। एक माता का पति बहुत शराब पीता था, बहुत ज्यादा, 25 साल से शराब पीता था। तो उसने सोचा कि जो है ना, बाबा ने जब इतना सहज तरीका हमें दिया है कि बच्चे तुम जो चाहो सो कर सकते हो, तो रोज सवेरे सवेरे उठ करके वो उस आत्मा को वो शांति का, शक्ति का दान देती थी। और रोज फिर उनको बताया ना, भाई रोज कोई भी समस्या है 108 बार लिखो, अगर बहुत बड़ी समस्या है तो 1008 बार लिखो। अब माताओं के लिए थोड़ी ये प्रॉब्लम आई कि हम तो अनपढ़ हैं, काउंटिंग तो जानते नहीं, तो हमारी बहनों ने उनको बड़ा अच्छा तरीका सिखाया कि तुम एक बार सोचो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिशाली आत्मा हूँ, बाबा की शक्ति की लाल किरणें मुझे मिल रही हैं, और जो भी बात है जैसे वो शक्ति प्राप्त हो रही है। माना वो कुछ सेकंड के अंदर सोचें, फील करें और फिर अपनी कॉपी के अंदर एक बिंदु लगा दो,
वो तो अनपढ़ लगा सकती है ना, तो उनको समझा दिया एक पेज में, इधर इतनी बार, इधर इतनी बार, तो ये इतने 108 हो जाएंगे। वो माताएं रोज कॉपी भर भर के लाती हैं और बहनों से, वो कभी उनको लिखती हैं गुड, कभी एक्सीलेंट, बड़ी खुश होती हैं। और इतने वंडरफुल अनुभव, आप सुनो ना, इतने वंडरफुल अनुभव, कोई बीमारी के ऊपर, कोई घर की समस्याओं के ऊपर। हमारे पास एक बहन है, उसको आकर के माता ने कहा कि दीदी हमारा, मेरा बेटा चला गया घर से, और जो है ना वो एक ही लड़का था। अब आप कहते हो बाबा सब कुछ करता है, अब आपको ही करना है जो कुछ भी करना है। तो छोटी सी बहन थी हमारी, तो उसने कहा कि ठीक है हम योग करेंगे। तो कहती है 3 दिन में उसको बुलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो बहन भी जो है ना, एक बार तो बिचारी, फिर उसने सोचा नहीं, हमारा बाबा इतना बड़ा सर्वशक्तिवान है। तो उन्होंने खुद लिख लिख करके अभ्यास किया कि जैसे बाबा सर्वशक्तिवान की मैं संतान हूं, और बाबा जैसे उस बच्चे का हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं। जब 3 दिन पूरे हो गए तो कुछ भी नहीं हुआ, तो वो बहन जाके बाबा के सामने बैठ गई और कहा बाबा आप तो कहते हो कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं है? और अब वो माता तो आके मेरा कान पकड़ेगी। तो इतनी देर में ही जो है ना उस माता का फोन आया कि दीदी मेरे बेटे का फोन आ गया और वो शाम तक घर आ जाएगा। आप सोचो कितनी अनपढ़ माताएं बाबा को कहते ना भोला नाथ, कितनी सारी चीजों पर। मैंने खुद एक वो किया कि अभी थोड़े दिन पहले अकाउंट की मीटिंग थी हमारी, तो 2 साल से एक ऑब्जेक्शन था जो पेंडिंग चल रहा था, और उसमें हमारे एक मकान की ट्रस्ट की रजिस्ट्री थी वो मिल नहीं रही थी, और 25 साल पुरानी थी। बॉम्बे से भी रिकॉर्ड चाहा हमने, उन्होंने भी नहीं, वहां पर भी कोर्ट में भी बहुत कोशिश की, वो रिकॉर्ड कहीं नहीं मिला, और वो रजिस्ट्री हम रख करके भूल गए थे। तो फिर जो है ना 2-3 बिल्डिंग है जैसे हांसी में, तो एक पुरानी बिल्डिंग, फिर एक बीच में थी, फिर एक बड़ी नई बनी है। तो जो बीच वाली थी वो ट्रस्ट की थी, और वहां से सब पेपर वगैरह हम ले आए थे, कुछ भी नहीं था वहां पर। और उससे पहले का जो पुरानी बिल्डिंग है वहां तो उसका मतलब ही नहीं था, क्योंकि जो बीच में मकान बना था उसकी थी। तो हमने 1 मास तक उसको ढूंढा, क्योंकि 2 साल से ऑब्जेक्शन चल रहा है अकाउंट में, अब उसको हटाना भी जरूरी था, और किसी भी तरह हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। और नेक्स्ट डे आना था मुझे मधुबन में, तो मैं बाबा के कमरे में बैठ गई और मैंने कहा बाबा आपको तो पता है कि वो पेपर कहाँ है, और मैं सारे पेपर बहुत संभाल के रखती हूँ, कभी गुम नहीं होता इधर उधर, तो वो कहाँ पर रखा गया है, सिर्फ भूल हो गई है, तो आप वो बताओ। तो बाबा ने जैसे सुबह सुबह टच कराया, वो जो तीसरा मकान था ना पुराना, वहां के लिए। लेकिन थोड़ा सा कई बार हम, क्या होता है कि बाबा हमें टचिंग भी देता है, लेकिन थोड़ी सी फिर अपनी बुद्धि चलानी शुरू कर देते हैं। फिर सुबह तो ये टचिंग आई, तो मुझे आया कि वहां जाकर के चलो देखेंगे, आज बाबा ने ऐसा आभास कराया कि वो वहां है। फिर दिन में थोड़ा सा सोचने लगे कि वहां तो वो पेपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उस, वो जब मकान बना था तब तक तो इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, वापिस वहां तो जा ही नहीं सकता, बीच वाले से तो यहां नई बिल्डिंग में ही आएगा। थोड़ा सोच साच के जो है ना दिन भर में नहीं गए। नेक्स्ट डे सुबह चलना है, फिर शाम को 6 बजे फिर पावरफुल संकल्प आ रहा है कि एक बार वहां जाओ, एक बार वहां जाओ। जैसे ही बाबा के कमरे में गई तो फिर मैंने बहन को कहा कि अभी लेके चलो, एक बार जाना ही है वहां। फिर उस मकान में गए, जैसे ही अलमारी खोली, पहला पहला पेपर सामने वो रजिस्ट्री का रखा हुआ है, पहला पहला। तो देखो बाबा हमारे हर काम को सरल करता है, बिल्कुल सहज सरल। लेकिन अगर बोझ का टोकरा अपने ही सिर पर रखेंगे तो फिर बाबा उनको छोड़ देता है कि अपनी चिंता खुद कर रहे हैं, मैं किसी और की करूं। तो इसलिए जिसको फरिश्ता बनना है उसको क्या करना है, फरिश्ते के सिर पर कभी टोकरा नहीं होता। देखा है टोकरा, फरिश्ते के सिर पर सफेद सफेद लाइट का ताज होता है, उसके विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। इसलिए हम बिल्कुल हल्के रहें। कोई भी बात आती है सबसे पहले बाबा से डिस्कस करें, सबसे पहले बाबा उसको बिल्कुल क्लियर टचिंग देगा कि बच्चे ये काम करना है और ये नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर। तो हमें इतना अच्छा साथी, समर्थ साथी साथ निभाने के लिए मिला है और फिर भी हम बोझिल होते रहे तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए बिल्कुल हल्के होकर जाना है। बाबा जैसे अंगुली पकड़ के मुझे सारा दिन चला रहा है, घर में रहते हुए सब काम काज करते हुए भोजन बनाते हैं, सबसे पहले पूछो बाबा आज आपके लिए क्या बनाऊं, घर में औरों से पूछते हैं ना। बाबा से सारा दिन बातें करो, निरंतर योगी माना क्या, सारा दिन सेंटर से क्लास करके चले बाबा की उंगली पकड़ के चलो, भोजन बनाते हैं बाबा से बातें करते हुए बनाओ, फिर बाबा को भोग स्वीकार कराओ, फिर बाबा के साथ में खाओ। कोई भी बात घर की है कुछ भी है तो वो पहले बाबा से हमें बातचीत करने की आदत डालनी है, चाहे बिजनेस है ऑफिस है, वहां पर बैठे हुए भी बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए भी अशरीरी हो जाओ, बाबा से बातें करो, तो सचमुच में देखेंगे कि सारा दिन हमारा जो योग का लिंक है वो बना रहेगा और तभी हम बिल्कुल लाइट रह सकते हैं। तो इस संगम युगी जीवन के अंदर इतना बड़ा जो सौभाग्य मिला है, भगवान का साथ मिला है, तो इस समय हमें बाबा की अंगुली पकड़ के सारा दिन चलना है और बाबा को अपने घर में भी बुलाना है। आवाहन करते हैं बाबा का सब, कौन कौन करते हैं बाबा का आवाहन, वाह सारे पास हैं यहाँ तो बहुत अच्छा। और बाबा का आवाहन करके बाबा का पूरे घर में चक्कर लगवाओ उंगली पकड़ के, बाबा अपनी पवित्रता और शांति की किरणें फैला रहे हैं, बाबा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, और फिर बाबा का पूरे घर में चक्कर लगवाओ। जहां पर भगवान आएगा रोज उस घर के अंदर कोई समस्या टिकेगी नहीं। अपने ऑफिस में भी बाबा को बुलाओ, अपने ऑफिस में भी बाबा के वाइब्रेशन फैलवाओ, तो वहां भी वातावरण बोझिल नहीं रहेगा। दुकान पे बैठे हैं तो वहां भी बाबा को बीच बीच में बुलाओ, बाबा का सकास उसकी शक्ति फैल रही है। रात को बंद करके आते हैं तो भी बाबा आप इसकी संभाल करना। तो इस तरह से जहां भगवान की उपस्थिति होगी, उसकी प्रेजेंस होगी, वहां कोई समस्या टिकेगी नहीं। और जब बाबा सारे बोझ उठाएगा वो सब कुछ संभालेगा। कोई भी बात आई, चाहे वो शरीर की कोई बीमारी की बात है, कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस की बात है, सवेरे सवेरे बैठ के बाबा को बड़े लाइट रूप से सब कुछ सुना दो और वो बोझ बाबा के हवाले कर दो, तभी हम सारा दिन बिल्कुल लाइट रहेंगे। बाबा के हवाले भी करना है और बाबा की अंगुली पकड़ के भी चलना है, और उसके साथ साथ हमें बिल्कुल लाइट रहना है, हल्का रहना है। तो बातों को पकड़ना नहीं है, छोड़ते चलो छोड़ते चलो। एक घंटा पहले क्या हुआ वो भी चित्त में नहीं रखना है, ना बातों को पकड़ना है और ना बातों को बढ़ाना है। ये पक्का कर लो, कोई भी बात आई फुल स्टॉप लगाया, उसको समेट दिया। जो छोटी छोटी बातों को सोचता है, ज्यादा सोचता है, उसकी छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और जो बड़ी बड़ी बात को भी बिल्कुल हल्का कर देता है, कोई बात नहीं, जो होगा सो, ड्रामा अनुसार अच्छा होगा, हैं, बाबा मेरे साथ है। कितनी भी बड़ी बात हो, जैसे ही हमें स्मृति आएगी कि बाबा मेरे साथ है, वो बात का साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि माया कुछ भी नहीं है, माया केवल हमारे कमजोर संकल्प, और उसको हम बार बार पंप करते हैं, कमजोर चिंतन बार बार करते हैं, तो माया का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हमारे थॉट्स पावरफुल होते हैं तो माया का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। एक छोटी सी बात याद आती है मुझे कि एक बार श्री कृष्ण और उनके मित्र सात्विकी और बलराम तीनों कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक जंगल से गुजरना था और उसमें एक बड़ा भयंकर राक्षस था, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जब वो गुजरने का समय आया तो रात का समय हो गया था, और रात को तो आसुरी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो तीनों ने आपस में डिसाइड किया कि रात को जो है ना, दो सो जाएंगे और एक जाग करके पहरा देगा। तो सबसे पहले सात्विकी ने कहा कि मैं जागूंगा और आप दोनों सो जाओ, बलराम और श्री कृष्ण। तो जैसे वो दोनों सो गए और वो राक्षस आया, और वो बड़ी उसने जोश से हुंकार की, और जैसे जैसे उसको जोश आया, सात्विकी को भी जोश आया, उसने भी अपना मुकाबला करना शुरू कर दिया। अब जितना ये मुकाबला करे उतना उसका आकार जो था ना, वो बढ़ना शुरू हो गया, बहुत बड़ा हो गया। आखिर ये एक दूसरे को जीत नहीं पाए, और इस उठापटक में जो है ना, बलराम की आंख खुल गई। फिर बलराम ने कहा कि अब तुम सो जाओ और मैं इससे निपट लूंगा। तो जो है ना, फिर बलराम आया सामने, उसने उसको भी ललकारना शुरू किया। तो बलराम भी बड़ा जोश वाला था, तो जो है ना, उसने भी ललकारना शुरू किया, और वो दोनों आपस में जो है ना, काफी कुछ करते रहे। और जैसे जैसे बलराम को आवेश आता था, उसका आकार बढ़ता जाता था, आखिर जीत नहीं पाया। फिर श्री कृष्ण तो जागती जोगते जाग तो रहे थे, वो उनका तमाशा देख रहे थे। तो आखिर वो भी उठ गए और उन्होंने कहा, अब तुम दोनों सो जाओ और अब मैं इससे निपट लूंगा। तो जब श्री कृष्ण उसके सामने आए, तो उसने, राक्षस ने फिर से बड़ा जोश आवेश और अपना जो भी था ना, दिखाना शुरू किया। तो श्री कृष्ण उसको देख देख के मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। और जैसे जैसे वो मुस्कुराते रहे, तो धीरे धीरे उसका, राक्षस का जो जोश था वो कम होना शुरू हो गया, और उसका साइज जो था ना, वो घटना शुरू हो गया। और घटते 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 जो है ना, वो एक छोटा सा कीड़ा बन गया। और श्री कृष्ण ने अपना रुमाल निकाला, उसको कीड़े को उसमें रखा, गांठ बांध के जेब में डाल लिया। और सुबह उठने के बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो श्री कृष्ण ने वो खोल के दिखाया, कहा देखो ये था वो। तो माया क्या चीज है, क्या चीज है, वो बहुत छोटी कागज का शेर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे कमजोर संकल्प, हमारे नेगेटिव संकल्प उसको फोर्स देते हैं, वो बलवान बनती जाती है। और जैसे जैसे माया शक्तिशाली बनती है, हमारी शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। अगर माया की शक्ति 60% तो हमारी 40, उसकी 80 तो हमारी 20, हमारी 80 तो उसकी उसकी कितनी रह जाएगी, 20। इसलिए माया को शक्तिशाली हमारे ही कमजोर संकल्प बनाते हैं। अब हमारे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान बाबा है। इसलिए सदा हल्के रहो, मुस्कुराते रहो, जरा सी कोई बात आई, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, कोई बात नहीं, बाबा मेरे साथ है, ड्रामा कल्याणकारी है, जो होगा सो अच्छा होगा, फुल स्टॉप। दिन भर में ये आदत डाल लो कि ज्यादा से ज्यादा फुल स्टॉप लगाना है। फरिश्ता बनना है तो नो क्वेश्चन, मैक्सिमम फुल स्टॉप, कोई बात नहीं, जो हुआ उसी में कोई ना कोई कल्याण है। और फरिश्ता माना आप कंप्लीट प्योर, प्योरिटी। हमारी प्योरिटी क्या है? केवल ब्रह्मचर्य का पालन, वो तो बहुत मोटी बात है, लेकिन बाबा ने प्योरिटी किसको कहा है? अब मनसा वाचा कर्मणा स्वपन संकल्प तक भी जरा भी कोई अशुद्धि ना हो। अगर थोड़ी सी भी किसी के लिए मन में ईर्ष्या है, ये भी इम्प्योरिटी है। अगर थोड़ी सी भी आसक्ति है, आकर्षण है, ये भी इम्प्योरिटी है। इसलिए कोई भौतिक आकर्षण आसक्तियां अब हमें ना खींचे, लेकिन वो तब होगा जब हम अंदर से भरपूर होते जाएंगे। अंदर से जितना हम बाबा के प्यार से भरपूर होते जाएंगे, हमें लोगों के प्यार की इच्छा नहीं रहेगी। जितना हम बाबा की शांति से भरपूर होते जाएंगे, सुख से भरपूर होते जाएंगे, तो जो भौतिक सुखों की आकर्षण है वो हमें खींचेगी नहीं। फरिश्ता माना जिसे कोई भौतिक आकर्षण आकर्षित ना करे, देखने की, घूमने की, खाने की, पहनने की, ये आकर्षण सिद्ध करती है कि जो अंदर का रस है वो अभी हमने नहीं लिया है। तो इसलिए हम जितना अंदर से भरेंगे, बाबा सातों गुणों के सागर हैं, सागर अनंत है, उसकी बहुत गहराई है, बाबा की शांति की गहन अनुभूति करें। हमें बाहर के पर चिंतन पर दर्शन फीके लगेंगे, इच्छा ही नहीं होगी। ये जो बार बार इच्छा होती है ना, ये बात करूं, ये सुनूं, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये आकर्षण सिद्ध करती है कि बाबा का जो आनंद है वो आत्मा के अंदर आया ही नहीं है। जो बाहर के सुख हैं, उनकी आकर्षण सिद्ध करती है कि वो वाला जो अलौकिक सुख है उसकी अनुभूति आत्मा ने अभी नहीं की है। जितना हम अंदर से भरेंगे उतना बाहर की चीजें सब फीकी लगेंगी। अब देखो दुनिया के अंदर भी ये एक ऑटोमेटिकली होता है, हर आत्मा भाग रही है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, यानी अंदर से खालीपन है और उसको भरने के लिए बाहर के प्रयास चल रहे हैं। अरबों खरबों इकट्ठे कर लिए, घोटाले कर लिए, कुछ भी कर लिया, क्या अंदर की प्यास उनकी शांत हुई? क्यों नहीं हुई? इतना कुछ मिल गया, क्यों? क्योंकि भरना था अंदर, वहां तो खालीपन उतना ही है, और बाहर सब कुछ भर लिया, अंदर की तृप्ति फिर भी नहीं हुई। तो बाबा के प्यार से जब हम भर जाएंगे, बाबा की शांति से जब हम भर जाएंगे, तो बाहर के जो ये भौतिक चीजों की जो भाग दौड़ है, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो अपने आप ही शांत होती जाएंगी। तो इसलिए योग बट्ठी माना क्या कि इसमें हम अंदर का जो सुख है, जो अलौकिक आनंद है, उससे अपनी आत्मा को भरते जाएं, भरते जाएं। इतना भर करके जाओ जो वहां जाने के बाद कोई बाहर की आकर्षण हमें आकर्षित ना करे। ठीक है, इतने जब भरे हुए होंगे तो अपने आप उड़ेंगे, अपने आप फरिश्ता बनेंगे, और जो अंदर से भरा हुआ होगा वो दूसरों को बांटेगा जरूर, और वही बांटेगा जिससे वो भरा हुआ है। जिसके पास सुख भरा हुआ होगा वो दूसरों को सुख जरूर देगा, जिसके पास दुख भरा हुआ होगा वो बांटेगा भी क्या, कुछ ना कुछ दुख वाली बात करेगा, टेंशन वाली बात करेगा। तो इस समय संगम युग पर क्या करना है, अपने आप को सब सुखों से भरपूर, आनंद से भरपूर, कोई जन्म ऐसा नहीं मिलेगा पूरे कल्प के अंदर जब भगवान इस तरह से पालना करे, और हमारे इस जीवन की छवि, इसकी छाया हर जन्म पे प्रभाव डालेगी। अब अपने आप को देख लो, हम कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं। 21 जन्म तो भरपूर आनंद रहेगा, लेकिन द्वापर कलयुग में भी हम कभी परेशान नहीं होंगे। लेकिन इस समय भगवान मिला, सत्य ज्ञान मिला, इतना बड़ा सौभाग्य मिला, और जो अब भी परेशान है, जीवन ऐसा नहीं होगा जिसमें वो भरपूर आनंद का अनुभव कर सके। तो इसलिए हमें ये पक्का करके जाना है भट्टी से कि आंतरिक सुखों से अपने को भरना है, और बहुत मौज का जीवन जीना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन मुझे अपने मन की स्थिति को कभी खराब, पक्का करेंगे ये संकल्प सब करेंगे पक्का, कुछ भी हो जाए सबसे कीमती चीज है मेरी मन की स्थिति, सबसे वैल्यूएबल, और उसको हम पाई पैसे की चीज पे छोड़ देते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे अपने मन की खुशी को कभी भी खत्म नहीं होने देना, बाबा को अपना साथी बना के रखना है। कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कल्याण देखते हुए बिल्कुल हल्का रहना है, और सबके प्रति शुभ सोचना है, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे अपनी जो शुभ भावना की नेचर है उसको कभी भी छोड़ना नहीं। तो सचमुच में हम बड़े हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे, और तभी हम लाइट रह करके फरिश्ता बन करके उड़ेंगे, और अपने उस फरिश्ता स्वरूप से संपूर्ण विश्व की आत्माओं की सेवा भी कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी सब फरिश्ता बन के उड़ेंगे। चलो हम सब बाबा की याद में बैठते हैं, और बिल्कुल हल्की फरिश्ता स्थिति में बैठ करके उसी स्थिति की अनुभूति करते हुए उस आनंद में उड़ता पंछी बनकर के बाबा से बहुत प्यार से मिलन मनाएंगे। फरिश्ता स्वरूप सचमुच जैसे जैसे हमारे संकल्प होते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसका निर्माण होता है। जितने प्योर संकल्प हैं उतना वो प्योर स्वरूप हमारा इमर्ज होता है अंदर में। हर आत्मा का एक ये जड़ शरीर है बाहर, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर हमारे संकल्पों से बनता है। जिसके संकल्प जितने नेगेटिव हैं तो उसका सूक्ष्म शरीर भी जैसे थोड़ा ब्लैकिश होता है और इतना सुखदायी नहीं होता है, लेकिन जितने संकल्प शुद्ध होते हैं तो उतना हमारा सूक्ष्म शरीर भी एकदम लाइट होता है, एकदम लाइट। तो आज हम अपने सूक्ष्म शरीर सहित उड़ करके बाबा के पास चलेंगे सूक्ष्म वतन में, और प्यारे बाबा से मिलन मनाते हुए वो शक्ति अपने अंदर भरेंगे, एकदम चार्ज हो जाएंगे वतन में बाबा के सामने, और उसी फरिश्ता स्वरूप में फिर हम चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सर्वात्माओं को भी शांति और शक्ति का दान देंगे। ओम शांति, ओम शांति। कुछ क्षण के लिए चलें अपने अंदर की ओर, अपने आप को देखें। मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर जागती ज्योत चमकता हुआ सूक्ष्म सितारा आत्मा राजा हूं। ध्यान से देखें मस्तक के मध्य में सफेद सूक्ष्म सितारा अति सूक्ष्म पूरा ध्यान एकाग्र कर लें माथे वाले सफेद हल्के सितारे पर। मैं अति सूक्ष्म सुई की नोक से भी सूक्ष्म भ्रुकुटी के मध्य में और गहराई में देखें, भ्रुकुटी की गुफा के बीच में छोटा सा सफेद सितारा चमक रहा है। मुझ सितारे से सफेद प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ये दिव्य सफेद प्रकाश मेरा पूरा ब्रेन सफेद प्रकाश से भर गया। माथे वाले सितारे से निकलता हुआ सफेद प्रकाश पूरे चेहरे में फैल गया। धीरे धीरे ये प्रकाश भुजाओं में फैल रहा है। माथे वाले सितारे से निकलता हुआ सफेद प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मिट्टी की भुजाओं के अंदर प्रकाश की सफेद भुजाएं बन गई। ये सफेद प्रकाश हृदय में पेट में भरता जा रहा है। माथे से निकलता हुआ सफेद प्रकाश पैरों में फैल गया। मिट्टी के पैरों के अंदर लाइट के सफेद पैर बन गए। बाहर ये जड़ मिट्टी का शरीर, अंदर सूक्ष्म सफेद प्रकाश का शरीर। मैं आत्मा सितारा दो शरीरों के बीच में बैठा हूं। धीरे धीरे महसूस करें प्रकाश का शरीर मिट्टी के शरीर से अलग हो रहा है। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में
इस मिट्टी के शरीर से ऊपर जा रही हूं। ये जड़ शरीर नीचे बैठा है, मैं सूक्ष्म फरिश्ता इस छत से बाहर नीले आकाश में शांति और पवित्रता का प्रकाश फैलाते हुए उमंग उत्साह के पंख लगे हुए मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते चंद्रमा और सितारों से भी पार अपने प्यारे सूक्ष्म वतन में पहुंच गया। चारों तरफ सफेद बादल ही बादल है। कितना हल्कापन है, सफेद चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। मैं हल्का फरिश्ता सफेद चमकीली ड्रेस में, माथे में सितारा चमक रहा है, उमंग उत्साह के पंख लगे हुए हैं। मैं फरिश्ता एक बादल पर खड़ा हूं। मेरे प्यारे बाबा कहाँ हैं? इस बादलों की दुनिया में दूर सामने प्यारे बाप दादा बाहें पसारे खड़े हैं। मुझ फरिश्ते का आवाहन कर रहे हैं। मैं फरिश्ता उमंग उत्साह के पंखों से बादलों की चादर पर कदम कदम रखते हुए प्यारे बाप दादा के समीप, प्यारे बाबा के सामने हूँ। महातेजस्वी फरिश्ता प्यारे अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। महसूस करें बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते को प्राप्त हो रही हैं। मेरा रोम रोम बाबा की स्नेह की दृष्टि से निहाल हो रहा है। प्यारे बाबा ने अपने लाइट के हाथ से मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। बड़े प्यार से बाबा मुझे कह रहे हैं, मेरे प्यारे नन्हे फरिश्ते, सफलता मूरत भव। महसूस करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर है।
बाबा के प्यार भरे शब्द कानों में गूंज रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे विजयी भव। सफलता मूरत भव, निर्विघन भव, प्यारे बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। महसूस करें कितनी प्यार भरी दृष्टि से बाबा ने मुझे विजय का वरदान दे दिया है। बाबा की दृष्टि से शक्तिशाली प्रकाश की किरणें प्राप्त हो रही है। मुझ फरिश्ते के सिर पर प्रकाश का चक्र बन गया। प्यारे बाबा, मुझ फरिश्ते को सफलता की माला गले में पहना रहे हैं। महसूस करें प्यारे बाबा ने मुझ फरिश्ते का कितना सुंदर अलौकिक श्रृंगार कर दिया है। सिर पर प्रकाश का चक्र है, मस्तक पर विजय का तिलक है, गले में सफलता की माला है। सिर पर बाबा का हाथ है, प्यारे बाबा की शक्तिशाली दृष्टि जिससे मुझे प्यार और शक्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। मैं फरिश्ता शक्ति से भरपूर हूँ, प्यार से भरपूर हूँ। ये कितना सुंदर अलौकिक दृश्य है। चारों तरफ पवित्रता का प्रकाश है, मैं सजा हुआ फरिश्ता निरंतर बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। अपने अलौकिक श्रृंगार को और प्यारे बाबा की दृष्टि का आनंद कुछ क्षण लेते रहे। पूरा ध्यान बाबा महातेजस्वी फरिश्ता मुझे दृष्टि दे रहा है। अपने अलौकिक श्रृंगार को देखें और प्यारे बाबा की दृष्टि लेते रहें।
सभी फरिश्ते बाबा से शक्ति भरकर अपने अलौकिक श्रृंगार सहित बाबा की शक्तियों से चार्ज होकर अब हम पवित्रता के फरिश्ते अपना पवित्र प्रकाश फैलाने के लिए इस पूरे जगत का चक्र लगाएंगे। सब दुखी अशांत आत्माओं को शांति का दान देंगे। कुछ क्षण आत्माओं को शांति का दान देंगे, फिर कुछ समय सारी प्रकृति के पांचों तत्वों को अपने फरिश्ता स्वरूप से, अपने पवित्र प्रकाश से प्रकृति को पवित्र बनाएंगे। दुखी अशांत आत्माओं को शांति देंगे, भक्तों की आस पूरी करेंगे। अभी हम सब फरिश्ते प्यारे वतन से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए इस पूरी सृष्टि पर चक्कर लगाएंगे और सबको शांति का दान देंगे। बहुत सुंदर यात्रा, सबको अपने फरिश्ता स्वरूप में कुछ समय करनी है।